आज का टॉपिक है आत्महत्या। आत्महत्या वैयक्तिक विघटन की चरम अभिव्यक्ति है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करना। आत्महत्या को कई विद्वान एक मानसिक विकार मानते हैं, लेकिन आज अधिकांश मानव शास्त्री, समाज मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्री एक सामाजिक तथ्य मानते हैं। आत्महत्या अनेक प्रकार के सामाजिक मानसिक परिस्थितियों का परिणाम होती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आत्महत्या को अलग अलग विचारकों ने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जैसे दुर्खीम ने आत्महत्या को सामाजिक आधार पर परिभाषित किया। उनका कहना था कि आत्महत्या का तात्पर्य किसी भी ऐसी मृत्यु से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की सकारात्मक अथवा नकारात्मक क्रिया का परिणाम होती है, और इस परिणाम के बारे में व्यक्ति पहले से ही जागरूक होता है। जबकि मॉवरर का कहना है कि आत्महत्या वैयक्तिक विघटन की एक सम अवस्था नहीं है, बल्कि यह दो रूपों में स्पष्ट हो सकती है। प्रथम वह, जिसमें व्यक्ति केवल अपने जीवन का अंत करना चाहता है, और दूसरा रूप वह है जिसमें व्यक्ति अपने चारों ओर के व्यक्तियों की सहानुभूति प्राप्त करने अथवा उन पर नियंत्रण स्थापित करने के एक साधन के रूप में अपने जीवन का अंत कर देता है। पहली स्थिति नकारात्मक है, जबकि दूसरी स्थिति सकारात्मक है। इन परिभाषाओं से आत्महत्या की कुछ प्रकृतिगत विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे कि आत्महत्या का अर्थ अपने जीवन को स्वयं अपनी इच्छा से समाप्त करना है। किसी दूसरे की प्रेरणा से किए गए जीवन के अंत को आत्महत्या नहीं कहेंगे। दूसरा, आत्महत्या में कर्ता का परिणाम के प्रति चेतन या जागरूक होना अति आवश्यक है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा किए गए जीवनांत को हम आत्महत्या नहीं मानते हैं। तीसरा लक्षण ये है कि आत्महत्या में व्यक्ति के प्रयास का तत्व निहित होता है। दुर्घटनावश हुई मृत्यु को आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। चौथा लक्षण है कि आत्महत्या केवल परिस्थितियों का सामना न कर सकने की असमर्थता से ही संबंधित नहीं होती, बल्कि कभी कभी परिस्थितियों को समूह के अनुकूल बनाने के लिए भी आत्महत्या की जाती है। ऐसी आत्महत्याएं प्रायः योजनाबद्ध होती हैं। अब हम आत्महत्या के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। आत्महत्या के प्रमुख सिद्धांतों में पहला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने आत्महत्या को व्यक्ति की मानसिक और संवेगात्मक अस्थिरता की वजह से उत्पन्न बताया है। जैसा कि प्रमुख और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं फ्रायड, उन्होंने कहा कि मनुष्य के सभी व्यवहारों को उसकी दो परस्पर विरोधी इच्छाओं के आधार पर समझा जा सकता है। ये इच्छाएं हैं एक जीवित रहने की और दूसरी मरने की इच्छा। व्यक्ति आत्महत्या तभी करता है जब मृत्यु की इच्छा जीवित रहने की इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। इसे स्पष्ट करते हुए फ्रायड कहते हैं कि बहुत से व्यक्तियों में शत्रुता की भावना होती है, परंतु वे अनेक नियंत्रणों के कारण अपने शत्रु को मारने में सफल नहीं हो पाते। इसके फलस्वरूप वह मारने की इच्छा से अपना तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं, वो करना प्रारंभ कर देते हैं। इससे उनकी अंदर स्वयं मरने की इच्छा प्रबल हो जाती है और वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। फ्रायड के अतिरिक्त भी कार्ल मैनिंजर हैं, जिलबुर्ग हैं, फेलरेट हैं, विलियम्स आदि विद्वानों ने भी वैयक्तिक मनोवृत्तियों एवं प्रेरणाओं के आधार पर आत्महत्या का विश्लेषण किया है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसके प्रमुख विचारक हैं दुर्खीम। दुर्खीम सबसे पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने आत्महत्या के लिए सामाजिक तथ्यों को उत्तरदायी माना। उन्होंने कहा इसकी व्याख्या सामाजिक दशाओं के संदर्भ में ही की जा सकती है। वास्तव में व्यक्ति का जीवन सामूहिक चेतना के अधीन होता है। समूह के अस्वस्थ दबाव का परिणाम आत्महत्या के रूप में प्रकट होता है। व्यक्ति पर समूह का अस्वस्थ दबाव दो रूपों में स्पष्ट होता है। पहला तो समूह के नियंत्रण में ह्रास तथा व्यक्ति पर समूह का आवश्यकता से अत्यधिक नियंत्रण। समूह के नियंत्रण में कमी आने से अहमवादी और विसंगतिपूर्ण आत्महत्याएं होती हैं, जबकि समूह का व्यक्ति पर अधिक दबाव परार्थवादी आत्महत्याओं की दर को बढ़ावा देता है। दुर्खीम ने आत्महत्या के तीन भेद बताए हैं। पहला प्रकार उन्हें बताया अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। ये आत्महत्या एक ऐसी सामाजिक दशा का परिणाम है जिसमें समूह के नियंत्रण में कमी आ जाती है और व्यक्ति में व्यक्तिवादिता की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति में प्रेम, त्याग, पारस्परिक सहयोग जैसे गुणों का स्थान व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना ले लेती है और व्यक्ति स्वयं को समाज से उपेक्षित समझकर आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होता है। यह आत्महत्या गांव की अपेक्षा नगरों में, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में और विवाहितों की अपेक्षा अविवाहितों और तलाकशुदा लोगों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। आत्महत्या का दूसरा प्रकार था परार्थवादी आत्महत्या। ये आत्महत्या व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित ना होकर किसी अन्य व्यक्ति अथवा अपने समूह के हित को ध्यान में रखकर की जाती है। किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि उसके बलिदान से समूह की प्रतिष्ठा और संगठन में वृद्धि होगी अथवा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की रक्षा होगी, तो व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने को तत्पर हो जाता है। भारत में प्रचलित जौहर की प्रथा इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन आत्महत्याओं का आधार नैतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही होता है। तीसरी आत्महत्या उन्होंने बताई विसंगतिपूर्ण आत्महत्या, अनामिक सुसाइड। दुर्खीम ने विसंगति की दशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि जब किसी आकस्मिक परिस्थितियों के फलस्वरूप सामाजिक संगठन और नैतिक संतुलन बिगड़ जाता है तथा व्यक्ति परिवर्तित दशाओं से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता तो ये स्थिति विसंगति की दशा होती है और इस दशा में की जाने वाली आत्महत्याओं को ही विसंगतिपूर्ण आत्महत्या कहा जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमें समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे प्राकृतिक विपत्तियों का सामना ना कर पाने की दशा में, दिवालिया हो जाने की दशा में या बहुत बड़े राजनीतिक उलटफेर के कारण अक्सर ऐसी आत्महत्याएं संपादित होती हैं। दुर्खीम के अतिरिक्त कैवन ने भी व्यक्तिक विघटन की तीव्रता के आधार पर और हॉबवॉच ने नगरीय जीवन की वर्तमान विशेषताओं के आधार पर आत्महत्या का विश्लेषण प्रस्तुत किया। गिब्स तथा मार्टिन हेनरी तथा शाह और मार्टिन गोल्ड ने भी समाजशास्त्रीय आधार पर आत्महत्या की विवेचना की। इन सभी ने सामाजिक परिस्थितियों को ही आत्महत्या का प्रमुख निर्धारक कारक माना। अब हम चर्चा करेंगे आत्महत्या के विभिन्न कारणों की। आत्महत्या एक जटिल सामाजिक घटना है और इसके लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी हैं। पहला कारक है व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारकों में शारीरिक दोष हैं, शारीरिक रोग हैं, शारीरिक व्याधियां हैं, मानसिक विकार हैं, व्यक्तिगत व्यसन है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा है पारिवारिक कारक। पारिवारिक कारक में टूटे हुए परिवार हैं, पारिवारिक कलह है, दाम्पत्य जीवन में असमंजस्य है, दुर्व्यवहार है, अविश्वास है, ये सारे कारण आते हैं। तीसरा है सामाजिक कारक। इसमें सामाजिक कुरीतियाँ, पद की हानि, सामाजिक विघटन, समाजीकरण की दोषपूर्ण गति, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक कारक भी उत्तरदायी हैं आत्महत्या के लिए, जैसे कि अत्यधिक निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक असफलताएं आदि। नेक्स्ट है धार्मिक कारक। धार्मिक कारकों में धार्मिक रूढ़ियाँ, पातक की भावना इन द सेंस की संकीर्ण और कट्टर प्रकृति के जो धर्मानुयायी धार्मिक नियम का तनिक भी उल्लंघन होने पर पातक की भावना का शिकार हो जाते हैं और प्रायश्चित स्वरूप आत्महत्या कर लेते हैं। इसी तरह से धार्मिक स्वीकृति, जबकि हिंदू धर्म में इसे पाप माना गया पर कई धर्मों में आत्महत्या की धार्मिक स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट है भौगोलिक दशाएं और मौसमी परिवर्तन भी मानसिक संवेगों को प्रभावित कर आत्महत्या के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्ययनों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि जनवरी से जून तक आत्महत्या की दर क्रमशः बढ़ती है और दिसंबर में सबसे कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, बाढ़ है, सूखा है, महामारी है आदि में भी आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पारिस्थिति शास्त्रीय दशाएं। परिस्थिति शास्त्रीय दशाओं में हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो आत्महत्या की दर को प्रभावित करती हैं, जैसे गाँव की अपेक्षा नगरों में स्थायी आवासीय केंद्रों की अपेक्षा बेघरबार और स्थान परिवर्तन करते रहने वाले लोगों में आत्महत्या की दर अधिक देखने को मिलती है। आत्महत्या का निवारण किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, अन्य सामाजिक समस्याओं की तरह आत्महत्या का समाधान भी अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का व्यवहार इतना आकस्मिक और संवेगात्मक होता है कि साधारणतया इसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। किंतु फिर भी यदि ध्यान से देखा जाए तो आत्महत्या के पूर्व लक्षणों को ज्ञात किया जा सकता है और व्यक्ति को आत्महत्या करने से रोका भी जा सकता है। कुछ प्रमुख प्रयास हैं जिनके माध्यम से हम आत्महत्या की दर को रोक सकते हैं, जैसे कि आत्महत्या के इच्छुक व्यक्ति को उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके, उसकी मानसिक स्थिति को समझकर और उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करके उसे आत्महत्या से रोका जा सकता है। आत्महत्या का व्यवहार स्वयं एक आवेग है जिसका मनोवैज्ञानिक उपचार भी किया जा सकता है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करके भी पर्यावरण जनित आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी समितियों का गठन होना चाहिए जो निराश व्यक्तियों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक विश्लेषण करके उन्हें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के उपाय सुझा सकें। निराश्रित और पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार की व्यवस्था, अपंगों वृद्धों को आर्थिक सहायता प्रदान करके और स्त्रियों के शोषण को कानून द्वारा निष्प्रभावी करके भी आत्महत्या की दर को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसके साथ ही आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों को कठोर दंड भी दिया जाना चाहिए। वास्तव में आत्महत्या कोई कानून विरोधी कार्य मानकर इसका समाधान नहीं किया जा सकता। एक सामाजिक समस्या और उसके समाधान हेतु परिवार और समाज का सहयोगात्मक रवैया अत्यंत आवश्यक है। बगैर समाज के और आम व्यक्तियों के सहयोग के इस समस्या से हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। धन्यवाद।